أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أقد أبقى बच्चा एक दिन स्कूल से आए और वो आपको ये खुशखबरी दे कि आपने यानी उसने हिस्ट्री में और तारीख में 100 out of 100 नंबर्स वो लेकर आया है और बेहतरीन उसका एग्ज़ाम हुआ है और 100% उसके नंबर आए हैं, तो आप उससे पूछते हैं कि यार हिस्ट्री में तुम इतने अच्छे नंबर लाए हो तारीख़ के अंदर, तो ये बताओ तुमने तारीख में तुम्हारी नज़र में कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो उम्दा वाक़यात हैं, जो बहुत ही बर्जस्ता वाक़यात हैं, या जिसको यूँ कह सकते हैं कि तारीख़ के वो टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं। ठीक, तो वो बच्चा मसलन ये कहेगा कि तारीख़ में जो सबसे बेहतरीन जो टर्निंग पॉइंट्स मेरी नज़र में वो ये कि मसलन कुछ 100 साल पहले गाड़ी का इख्तिरा हुआ, इन्वेंशन हुई और बेहतरीन इलेक्ट्रिसिटी वजूद में आई और टेक्नोलॉजी वजूद में आई, और सबसे बड़ा अहम टर्निंग पॉइंट तारीख में रेनेसांस है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई, और ये सारी चीज़ें जो सनअती हमें आज नज़र आती हैं ये उस रेनेसांस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नतीजा है। तो आपके जहन में, आप एक मुसलमान हैं बिलाखिर, आप उससे कहेंगे कि यार भाई ये क्या कह रहे हैं आप, ये तो बशरी निगाह है तारीख़ की जानिब, ये तो इंसानी निगाह है, ये तो मादी निगाह है, जिस्मानी निगाह है तारीख़ की जानिब। तो यहाँ पर हम एक ऐसे मतलब से हम देखते हैं, वो क्या है कि तारीख़ को दो निगाहों से देखा जा सकता है। एक वो निगाह है तारीख़ की जो राइज है इस वक्त, आप अपने बच्चों की स्कूल की किताबें देख लें, खुद आपने जब स्कूल में कॉलेजेस में हिस्ट्री और तारीख़ पढ़ी है तो आप उसमें देखें उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उसमें मसलन जो राइज तरीन किताबें हैं तारीख़ी, उसमें मसलन आपको कहीं भी औलियाए खुदा, अम्बियाए इलाही अलैहिस्सलाम की बातें नज़र नहीं आएंगी। उसमें आपको ये नहीं नज़र आएगा कि अम्बिया इलाही अलैहिस्सलाम तारीख़ के वो टर्निंग पॉइंट्स हैं। तारीख़ में जो अहम वाक़यात जिन शख्सियात ने और हस्तियों ने ईजाद किया वो अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं, औलिया खुदा अलैहिस्सलाम हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के एतबार से लिखी गई है और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंसान को फ़कत जिस्मानी देखता है, मादी देखता है, वो इंसान की रूह का कायल नहीं है। लिहाजा उसकी नज़र में जो तारीख़ के जो अहम वाक़यात हैं वो उसके उसी मादी पहलू से रिलेटेड हैं। इसी वजह से जो सबसे अहम टर्निंग पॉइंट इन किताबों में जो हमने पढ़ी हैं स्कूल्स के अंदर, वो यही कहते हैं कि रेनेसांस जो है इज़ द टर्निंग पॉइंट, इज़ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। और इसी वजह से आप देखें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं इंसान से रिलेटेड, वो उसी मादी और जिस्मानी एतबार से। जैसे मसलन आप कहते हैं कि इंसान का तकामुल, इंसान ने कितनी पेशरफ्त की है ज़मानों के एतबार से, मसलन आज 2020 में 21वीं सदी में इंसान ने किस कदर पेशरफ्त की है, तो वो जो अगर आप उनसे पूछें, ठीक है, जो मादी निगाह से तारीख को देखते हैं, तो वो आपको यही बताएंगे कि इंसान ने मसलन इतनी टेक्नोलॉजी बना ली है और आज बेहतरीन किस्म की गाड़ियां हैं और गैजेट्स हैं और टैबलेट हैं और टीवीज़ भी, आप देखें ये सब मादी एतबार से पेशरफ्त है, तकामुल है, सही है। तो ये हो गया मादी एतबार से। अब हमें, हम एज़ अ मुसलमान, हमें ये देखना है, चूँकि हम दीन के कायल हैं, दीन इस्लाम के कायल हैं, दीन ख़त्मी के कायल हैं, और हमें ये चाहिए कि हम उस एक इलाही निगाह से तारीख़ को देखें। सही, हमारे पास किताबें आसमानी हैं जिसका नाम कुरान है, तो कुरान से पूछें, इस किताब से पूछें कि ए कुरान आप बताएं कि तारीख़ आपकी निगाह में क्या है, خداوند نے متعال سے پوچھے کہ خدا نے جو آیات اپنے نبی کے قلب پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد پر جو نازل کی یہ آیات نازل کی ہیں، تو ان آیات کے اندر علامہ طباطبائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء سے متعلق 2200 سے زیادہ آیات پائی جاتی ہیں انبیاء کے قصص اور ان کی تاریخ کے بارے میں. تو اب یہاں ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ الہی اور خدائی نگاہ کیا ہے تاریخ کے بارے میں، یہ بہت اہم ہو جائے گا. اگر ہم اس سوال کو دیکھیں اور اس سوال کے جواب کے حوالے سے ہم چیک کریں، تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پوری ہسٹری کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور یہاں دیکھنا ہوگا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں وہ ہسٹری کے اہم نکات، اہم ٹرننگ پوائنٹس کون سے ذکر کیے ہیں. بس یہاں تک ایک بات واضح ہو گئی کہ مادی نگاہ سے کچھ ٹرننگ پوائنٹس ہیں جیسے رینیسانس ہے، اور الہی نگاہ سے بھی کچھ ٹرننگ پوائنٹس ہیں، اور جو اصل نگاہ ہے تاریخ کی نسبت وہ یہی الہی نگاہ ہے، قرآنی نگاہ ہے. اگر ہم الہی نگاہ سے دیکھیں تاریخ کو، تو خداوند متعال نے قرآن کریم میں جو تصویر تاریخ کی ہمارے لیے ترسیم کی ہے اور ایک نقشہ دیا ہے، اس اعتبار سے دیکھیں تو خداوند متعال نے دو چیزیں ہمیں دکھائی ہیں کہ اگر آپ مثلاً اگر آپ فرض کریں کہ آپ اس تاریخ انسانیت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اوپر سے نگاہ کر رہے ہیں تاریخ کو، تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی، وہ کیا ہے؟ ایک ہے حق اور ایک ہے باطل، اور حق اور باطل کے درمیان دائمی اور ہمیشہ کی جنگ، یہ آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی. حضرت آدم سے لے کر نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور روز قیامت تک. اچھا، اب حق اور باطل کی جنگ کے مختلف مراحل ہیں، یہاں پر مختلف ٹرننگ پوائنٹس ہیں. اب اسی جنگ کے اندر آپ کو جو بھی آج کی دنیا، آج کے زمانے میں بھی، آج آپ جو مثلاً 2020 میں ہیں، 1442 میں ہیں، اور اس زمانے میں ہیں، تو آپ کے ارد گرد جو واقعات آپ کو نظر آتے ہیں، الہی نگاہ سے آپ کو ہر حادثہ جو آج کے زمانے میں پیش آتا ہے، اسی حق اور باطل کی نگاہ سے آپ کو دیکھنا ہوگا. حتیٰ COVID-19 اور کورونا وائرس کا جو واقعہ جس میں پوری دنیا اس وقت مبتلا ہے 6-8 مہینے سے، اس کو بھی آپ ایک معمولی حادثہ نہ لیں، یہ بھی حق اور باطل کی جنگ کے درمیان اور اس کے اندر، آپ کو اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اس واقعے کو انالیسس کرنا ہوگا، ورنہ اس کے بغیر آپ فقط اس کو ایک ڈیزیز کی حد تک دیکھیں گے اور دیٹس اٹ. بس حق اور باطل از اول آدم علیہ السلام، از اول انسان سے لے کر قیامت تک. اب میں بہت تیزی سے گزروں گا، ظاہر سی بات ہے باتیں یہاں پر بہت ساری ہیں، انشاءاللہ جب ہم آئیں گے مزید ڈیٹیل میں انشاءاللہ آنے والے کل سے، لیکن آج کا جو سیشن ہوگا وہ ایک مقدماتی سیشن ہے، تاکہ ہم واضح ہو جائیں اس حق اور باطل کی جنگ کے اندر، اور اس کے اندر عاشورہ اور خصوصاً 40 کا حادثہ، اور وہ ہم چیک کریں گے. تاریخ کے اندر الہی نگاہ سے وہ ٹرننگ پوائنٹس کیا ہیں؟ اب سوال یہاں پر یہ دیکھیں، 124,000 انبیاء علیہ السلام کو خداوند نے متعال نے مبعوث کیا، اور ان 124,000 انبیاء علیہ السلام میں سے 5 ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں. وہ کون سے انبیاء ہیں؟ وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ انبیاء علیہ السلام جو کہ اولو العزم ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ 5 ہستیاں ہیں جو تاریخ کی اہم ٹرننگ پوائنٹس ہیں. بہت ہی اہم نقطہ ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے. یہ قرآنی نگاہ سے ہے، یہ الہی نگاہ سے ہے. کیوں الہی نگاہ سے؟ ایک منٹ، کیا فرق ہے الہی نگاہ اور مادی نگاہ میں؟ الہی اور مادی نگاہ میں فرق وہی ہے جہاں پر وہ انسان کو ڈیفائن کرتے ہیں. مادی اعتبار سے اور ویسٹرن اعتبار سے انسان एक मादा है, एक जिस्म है, दैट्स इट। वो फकत यही है जो आपको नजर आता है, ये इंसान है। लेकिन इलाही निगाह और कुरानी निगाह से इंसान क्या है? इंसान ना फकत जिस्म है बल्कि वो रूह भी है, उसकी एक स्पिरिचुअल हकीकत है, एक रूहानी हकीकत है। ठीक, बस ये एक शॉर्ट फर्क मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप इंसान को फकत जिस्मानी एतबार से देखेंगे तो तारीख को भी फकत जिस्मानी एतबार से देखेंगे, तारीख के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो भी जिस्मानी एतबार से देखेंगे। इसी वजह से वेस्टर्नर्स और मगरीबी जो जो मुहक्किकीन हैं और जो स्कॉलर्स हैं वो तारीख और जो हिस्टोरियंस हैं, चूंकि वो इंसान को जिस्मानी एतबार से देखते हैं, लिहाजा वो कहते हैं कि इंसान की तारीख में जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो अंबिया नहीं है बल्कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये रेनेसांस है। लेकिन हम यानी इलाही एज अ मुसलमान इलाही निगाह से इंसान को क्या देखते हैं? ना फकत जिस्म बल्कि रूह के भी कायल हैं। चूंकि ऐसे हम इंसान को देखते हैं लिहाजा तारीख भी हमारी एक बिल्कुल डिफरेंट उसकी हैसियत होती है। हमारी नज़र में, इस्लाम की नज़र में, तारीख के टर्निंग पॉइंट्स अंबिया अलैहिस्सलाम हैं। तारीख के टर्निंग पॉइंट्स बेसत है। देखिए, चार अहम हादसे हैं, एक अंबिया अलैहिस्सलाम, खास तौर पर उलुल अज़्म अंबिया, और उसके बाद चार अहम हादसे जो नबी खत्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से रूनुमा होते हैं। वो क्या है? बेसत, गदीर, आशूरा और जुहूर। ये टर्निंग पॉइंट्स हैं तारीख के, एक वो उलुल अज़्म अंबिया और फिर ये चार टर्निंग पॉइंट्स। देखिए कितनी एक अलग निगाह बन जाती है तारीख की जानिब। अब आप इस निगाह से आएँ, अंबिया की हिस्ट्री को पढ़ें, आइमा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री को पढ़ें और तारीख इस्लाम पढ़ें आप इस निगाह से। अच्छा, मुमकिन है यहाँ पर बाज़ यूथ्स हमसे सवाल करें कि आप ये तो हमें बताएं कि ठीक है टर्निंग पॉइंट्स हैं, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन आप ये भी तो बताएं कि अंबिया का हदफ क्या था? सही, अगर हमें अंबिया का हदफ मालूम हो जाए तो हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि अइम्मा अलैहिस्सलाम का हदफ क्या था, और अगर हमें ये भी मालूम हो जाए तो हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि आशूरा का हदफ क्या था, कयाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हदफ क्या था। और अगर ये मालूम हो जाए, इस सवाल का जवाब मालूम हो जाए, तो बस हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि अरबईन का हदफ क्या है। और गैबत इमाम जमान अलैहिस्सलाम में हमें क्या वजीफा अंजाम देना है? मैं आपको खुलासतन बता दूं कि अंबिया अलैहिस्सलाम का हदफ सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन की बरपाई है। यानी क्या? इस्लामिक सिविलाइजेशन, अगर इसको मैं उर्दू में बयान करूं तो अंबिया अलैहिस्सलाम का हदफ इलाही तमद्दुन को ईजाद करना है। अब यहां पर एक इल्मी बहस है कि यार ये तमद्दुन क्या है, और इसका जो फर्क है मुख्तलिफ दीगर टर्मिनोलॉजी से, हकीकतों से, वो क्या है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, अंबिया अलैहिस्सलाम का हदफ हुकूमत कायम करना था, अंबिया या ये कहते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम का हदफ एक इस इलाही सकाफत और इलाही और मानवी सकाफत को क्रिएट करना था, या बाज़ लोग यूँ कहते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम का हदफ इंसान को तकामुल तक पहुँचाना है। सही, ये मुख्तलिफ चीज़ें बयान होती हैं, लेकिन इन तमाम ये सारी चीज़ें, ये सारे जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, जामे नहीं है। ठीक है, यानी मसलन बाज़ लोग जब ये कहते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम का हदफ हुकूमत कायम करना है तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जवाब जुदा करता है, सेपरेशन ईजाद करता है मुख्तलिफ चीज़ों से। सही, अब जो लोग इस चीज़ का प्रचार करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी को अमलन प्रैक्टिकली जो है वो उसका प्रचार नहीं करते, जो स्पिरिचुअलिटी को जो है बहुत ज़्यादा तबलीग करते हैं वो इस पहलू से जो है वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन एक ऐसा पहलू जो तमाम पहलुओं को शामिल है वो है तमद्दुन, वो है सिविलाइजेशन, जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी है, जिसमें सियासत भी है, जिसमें इकोनॉमिक्स और इक्तिसाद भी है, जिसमें सकाफत और कल्चर भी है, सारी चीज़ें, इंसान की ज़िंदगी के सारे अबाद और सारे पहलू और सारे डायमेंशंस इस एक टर्मिनोलॉजी और हकीकत के अंदर छुपा हुआ है, वो क्या है? तमद्दुन और सिविलाइजेशन। अब ये क्या है, ये कभी इसके लिए हमें दूसरे सेशंस चाहिए। इंशाल्लाह हम मुमकिन है आने वाले सेशंस में जब अरबईन के ऊपर बात करेंगे तो हम इसके ज़िमन में ये मुमकिन है मतालिब आ जाएं। इंशाल्लाह आप दुआ करें। बस अम्बिया अलैहिस्सलाम का हदफ तमद्दुन साजी है। खूब, अम्बिया अलैहिस्सलाम और आइमा अलैहिस्सलाम सब इसके अंदर शामिल है इस हदफ को लेते हुए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का भी हदफ क्या है? तमद्दुन और तमद्दुन साजी है। तमद्दुन को ईजाद करना, एक सिविलाइजेशन को ईजाद करना। इस वक्त मैं और आप गैबत के ज़माने में हैं, तो क्या मैं और आप किसी सिविलाइजेशन के अंडर जिंदगी नहीं गुजार रहे? बिल्कुल गुजार रहे। वो कौन सी सिविलाइजेशन है, आप खुद चेक करें। ठीक है, कम अज़ कम इस्लामिक सिविलाइजेशन के तहत हम जिंदगी नहीं गुजार रहे। तो बस वो कौन सी सिविलाइजेशन है, आप तहकीक करें और इसका जवाब कमेंट बॉक्स पर डालें। मेरी आपसे वाकई रिक्वेस्ट है कि इन सेशन, चूँकि ये कोई यहाँ पर मजलिस या खिताबत नहीं हो रही है, ये एक इल्मी सेशंस है। जब तक हम अरबईन और दीन को और इन तमाम और खुसूसन तारीख को एक इल्मी निगाह से नहीं देखेंगे और अहादीस की रूह से नहीं देखेंगे, तब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। अब ये जितने भी मतालब आपके सामने पेश किए, इसका ताल्लुक करबला से क्या है, इसका ताल्लुक अरबईन से क्या है? अब एग्जैक्टली यही नुक्ता है यहाँ पर, इसी नुक्ते पे आपको मैं आपके सामने जिक्र करूँगा। वो क्या है कि जितने भी अम्बिया आए हैं, खुसूसन अम्बिया उलुल अज़्म, ठीक है, अपने अपनी जिंदगियों के अंदर जब मसलन बास अम्बिया ने, तमाम अम्बिया ने अपने अपने कौम को खिताब किया और उनकी हिदायत करने की कोशिश की, ठीक है, मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सब के सब आए और उन्होंने दीन इलाही की जानिब दावत की। इस दावत के अंदर आप देखें तो हमें जो नज़र आता है कुरान करीम की आयात की रूह से, वो ये कि सब ने जो है वो मुखालिफत करना शुरू की, जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, ठीक है। खुसूसन सूरह शुरा के अंदर बहुत ही खूबसूरती से इस खास एक तरतीब के साथ जो है खुदावंद मुताल ने इस मुखालिफत को जिक्र किया है सूरह शुरा के अंदर। और इस मुखालिफत के अंदर मुख्तलिफ मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मुख्तलिफ मसाइब का सामना करना पड़ा और मुख्तलिफ चीज़ों में उनको मुबतला किया गया, सख्तियों में मुबतला किया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई, आप देखें कश्ती बनाते वक्त लोगों ने किस कदर उनका तमस्खुर किया, ठीक है, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दावत दी, किस तरह लोगों ने उनकी मुखालिफत की, खुसूसन हुकूमत नमरूद ने किस तरह मुखालिफत की और दीगर अम्बिया। पॉइंट यहाँ पर क्या है, पॉइंट यहाँ पर यह कि जब हमारे अम्बिया ने, इनके साथ ये मुसीबतें हुई, दो चार हुए, तो यहाँ पर इन्होंने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से तवस्सुल किया और खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल होते हैं। और ये वो मौका था जहाँ पर इस तवस्सुल के नतीजे में वो इन मुसीबतों से, इन बलाओं से अपने आप को निजात देते हैं खुदा के इज़्ज़त से। अब मैं आपके सामने देखें एक ऐसी हदीस लेकर आता हूँ कि अमालिये शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह, शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब उनकी है अमाली, उसके अंदर जिल्द एक सफ़ा नंबर 217 में ये हदीस में हमें इमाम मासूम अलैहिस्सलाम से हदीस मिलती, जिसमें हमें बखूबी नज़र आता है कि खुसूसन अम्बियाए उलुल अज़्म ने किस तरह मोहम्मद व आले मोहम्मद से तवस्सुल किया है। वो हदीस मैं आपके सामने यहाँ पर पेश करता हूँ, आप इसको गौर से सुने और आप ख़ुद हैरान होंगे कि मैं भी ख़ुद हैरान हुआ था जब मैंने ये हदीस पढ़ी थी। और वाकई खुदा ने तौफीक दी कि तारीख़ की जानिब एक मुकम्मल एक अलग निगाह खुदा ने दिए। और इंशाल्लाह अब आप देखें ये हदीस, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना इन्ना आदम अलैहिस्सलाम लम्मा असाबल खतीअता, जब आदम अलैहिस्सलाम उस ख़ता से दो चार हुए, कौन सी ख़ता से, जब जन्नत में इबलीस आया हज़रत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास और वसवसा किया उस इस मलऊन ने, और नतीजे में हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने उस फल को खाया और नतीजे में फिर खुदावंद मुताल का ख़िताब आता है कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ और फिर बिलाखिर वो खता से दो चार होकर अब यहाँ पर कानत तौबतुहू, ठीक है, तो यहाँ पर वो तौबा करते हैं। एंड जब तौबा करते हैं तो ये फरमाते हैं कौला, हज़रत आदम की ज़बानी, हज़रत आदम तौबा के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ठीक, ये इन्होंने हज़रत मुहम्मद व आलि मुहम्मद से तवस्सुल इख्तियार किया, और लम्मा गफरत अली फ़गफर अल्लाहु लहू, सही है, खुदावंद ने मुतआल ने फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत की। और ये हज़रत आदम, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, व इन्ना नूहन लम्मा रकिबा फिस्सफीनति व खाफ अलगरक قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस कश्ती पर सवार हुए और उनको खौफ हुआ कि हम गर्क होने वाले हैं, तो यहाँ पर वो तवस्सुल करते हैं मुहम्मद व आले मुहम्मद से, और फनजाहुल्लाहु अन्हु, और खुदावंद ने मुतआल उन्हें निजात अता करते हैं। व इन्ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम लम्मा उल्किया फिन्नार, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस हौलनाक आतिश में फेंका जा रहा था, तो यहाँ पर कौला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की मुहम्मद व आलि मुहम्मद लम्मा अंजैतनी मिन्हा फजअलहल्लाहु अलैह, यहाँ पर खुदावंद ने मुतआल ने उस आग को बर्दन व सलामा, उसकी गर्माहट ख़त्म करके और उस आतिश को, उस आग को ठंडक उसको दी, और यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निजात पाते हैं। व इन्ना मूसा अलैहिस्सलाम लम्मा अल्का असाहू, जब हज़रत मूसा ने अपना असा जो है वो अपनी असा को फेंका, उसको ज़मीन पर मारा, व औ जसफ़ी नफ़्सी खीफ़तन, यहाँ पर वो खौफ में मुब्तला हुए, फिर उन्होंने ये फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, कौला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की मुहम्मद व आलि मुहम्मद लम्मा आमनतनी हु, فقال الله جل جلاله لا تخف إنك أنت الأعلى। तो बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी यहाँ पर उनके दिल से वो खौफ ख़त्म हो गया। आप देखें, अजीब नहीं है, तमाम अंबिया उल अज़म, ठीक है, मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुतवस्सिल होते हैं और अपनी इन मुसीबतों से निजात पा लेते हैं। अजीब मकाम है अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का, मोहम्मद व आले मोहम्मद का। शायद हम खुद भी कोताही करते हैं। आप देखें, हम सब इस वक्त कोविड-19 में मुब्तला हैं, खुदा ना खास्ता, यानी मैं एक मजमूआन तौर पे बात कर रहा हूँ, खुदा हम सबको महफूज रखे इस बीमारी से। और जो भी मुब्तला हैं बेहक के मोहम्मद व आले मोहम्मद, तमाम इन मुब्तला इस कोविड-19 से इन्फेक्टेड बीमारान को और मरीज़ों को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए, और खुदाया बेहक के मोहम्मद व आले मोहम्मद इस पूरी दुनिया से इस मनहूस बीमारी को महव फरमा। देखें, मुख्तलिफ मुसीबतों में मैं और आप दो चार किए जाते हैं, खुदावंद मुताल की ये सुन्नत है, ये कायदा है कि मैं और आप मुख्तलिफ मुसीबतों में दो चार होंगे, और जिस कदर मैं और आप आखिर उस जमान से करीब होते चले जाएंगे, आखिर उस जमान में तो हैं, यानी जिस कदर हम जहूर से करीब होते चले जाएंगे उस कदर इब्तलाआत और मुसीबतों में दो चार किए जाएंगे। अब इसकी पूरी वजह है, इसकी वजूहात हैं, खुदावंद मुतआल क्यों हमें इन मुसीबतों में मुब्तला करता है, खुसूसन ज़माने गैबत के अंदर। बस मैं और आप इन अंबिया से सीखें और मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुतवस्सिल, दाइमन हमेशा मुतवस्सिल हों इंशाअल्लाह, और मुख्तलिफ बलाओं से निजात पाएँ। बस यहाँ पर नतीजा क्या हुआ आज के सेशन का? नतीजा ये हुआ कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुतवस्सिल होते हैं और अपनी मुसीबतों से निजात पाते हैं। तो बस तारीख़ को हम इस एतबार से देखें, इस एंगल से देखें कि तारीख़ के टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम, खुसूसन अम्बिया उल अज़म। अब कल के सेशन से मैं आपकी खिदमत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और अगर मुमकिन हुआ दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम की भी मैं हिस्ट्री के साथ आपको आपकी खिदमत में वो रिवायात पेश करूंगा कि जो ये बताती कि किस तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम ने امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں تھے اور یہ کشتی جب کربلا پہنچی تو پورا طوفان جو ہے وہ متلاطم ہوا, اور یہاں پر وہ مقام تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کو خوف ہوا کہ یہ کشتی کہیں غرق نہ ہو جائے, اور یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام محمد و آل محمد سے بھی متوسل ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے بھی متوسل ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ تمام واقعات آپ کی خدمت میں کل سے پیش کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ 40 تک پہنچیں ایز سون ایز پاسبل, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ 40 کا یہاں پر کیا رول بنتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.